शांति, ओम शांति। शिव बाबा क्यों आए हैं, कितने उत्तर मिल सकते हैं, क्यों आए हैं शिव बाबा। आज बाबा ने कहा है, मैं आया हूं सचखंड स्थापन करने। जो सचखंड था अब ये झूठ खंड हो गया है। तो सचखंड में कौन रहते हैं, सचखंड में देवताएं रहते हैं। जो सच्चे हैं वही रहते हैं। तो मैं आया हूं सबको देवता बनाने, इसलिए शिव बाबा को कहते ही हैं सच्चा पातशाह, जो सदा सच है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, गुणों का सागर भी है, इसलिए सुंदर भी है। और सत्य ही बताते हैं और सत्य युग स्थापन करते हैं। तो आज बाबा सत्य पर सुना रहे हैं कि ऐसे बच्चे भी फिर सत्य बनते हैं। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है इस समय। तो जो सतयुग इतना ऊंचा था, सच्चे थे, तो प्रकृति भी उनकी दासी थी। अब झूठे हो गए हैं तो प्रकृति भी उनको दुख दे रही है, तो दुख ही दुख है। तो फिर से बाबा हमें सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो आज इसी पर सारी मुरली है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और कैसे बनेंगे सच्चे, बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनेंगे। आत्मा सच्चा है, सच्ची है, शरीर तो झूठा हो गया। ये तो परिवर्तनशील जो चीज है वो तो झूठी है। जो आत्मा है, जो अपरिवर्तनशील है, वो सच्ची है। तो आत्मा अभिमानी बनाते हैं, याद की यात्रा सिखाते हैं। आत्मा और परमात्मा ये दो सत्य वस्तु है। तो इसीलिए सत्य हमें बाबा, जो सत्य स्वयं है वो हमें सत्य बनाते हैं। तो सत्य की परिभाषा को बाबा समझाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सत्य में बहुत कुछ आ जाता है, पूरा इसका भाषण हो सकता है। सत्य किसको कहेंगे। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। सत्य बनना है तो याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। सत्य तो तब बनेंगे ना जब शुद्ध बनेंगे। तो मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न है, अब शुद्धि की जहां बात आती है उसमें कितनी शुद्धि की बातें होती है। सब बहुत कुछ आता है, और सबसे बड़ी शुद्धि है खान पान की। तो प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। आज दुनिया में कितना अशुद्ध खान पान है, बात मत पूछो बाबा कहते हैं। तो कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाए। उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, या बाबा के पास हम आए हैं, ये स्मृति रहे तो किस लिए आए हैं। स्मृति क्या रहे कि सच हम यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सच खंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। अगर ये स्मृति नहीं है कि हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने लिए और बाबा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, तो शुद्ध खाना है, शुद्ध पीना है, शुद्ध रहना है, ये भूल जाएगा। तो इसीलिए हम क्यों आए हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। हाँ, बाबा कहते हैं देवताएं कभी बीड़ी पीते हैं क्या? और बीड़ी का होगी जो बीड़ी पियेंगे। जब हम सत्य बाबा के पास आते हैं सच खंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। सत्य माना शुद्ध, सत्य माना स्थाई, सत्य माना श्रेष्ठ। सत्य के कितने अर्थ हो सकते हैं। तो सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने आए हैं बाबा के पास, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वो कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। अब ये तो बच्चे समझते हैं, पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अब तुम कहाँ बैठे हो, पतित दुनिया में या पावन दुनिया में? हाँ, बाबा कहते हैं अभी तुम कहाँ बैठे हो, कलयुग के अंत में, पतित दुनिया के भी अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है, कौन पुकार रही है, बाबा आओ आकर हमें पावन बनाओ? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, ये पांच तत्वों का पुतला है ना, कहते हैं तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, क्या हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। पांच विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। तो बाप ने अभी स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है, पावन कैसे बनेंगे? तो क्या स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम पावन थे। स्मृति ये दिलाई है, तुम ये नहीं सोचो बड़ा मुश्किल है पावन बनना, तुम तो थे ना, तो कोई नई बात नहीं है। तो बाबा कहते तुम तो पावन थे। फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हो, तब पतित बने हो, तुम तो पावन थे। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ, तो मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। लिबरेट मी माना मुझे मुक्त करो। तो हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ, इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ, लिबरेट मी। तो बाबा कहते हैं तो हर एक कहते हैं अब मुझे छुड़ाओ भी, और फिर छुड़ाओ तो सही, फिर छुड़ा कर कहाँ ले जाओ, फिर पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। अब छुड़ाएंगे तो छोड़ थोड़ी देंगे, छुड़ा करके फिर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थाई शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती है, वहाँ सिर्फ आत्मा ही है, वहाँ सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है। नंगे का अर्थ ये नहीं है कि कपड़ा पहनने बिगर रहना, और नागे बन जाते हैं ना, कपड़े नहीं पहनते हैं। पर नंगे का अर्थ ये नहीं है कि कपड़े ही नहीं पहनना, कपड़े बिगर रहना, नहीं, शरीर बिगर आत्माएं नंगी यानी अशरीरी रहती है, शरीर वस्त्र है। तो शरीर बिगर आत्माएं नंगी अर्थात अशरीरी रहती है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, सबसे अधिक 84 जन्म, जो शुरू शुरू में आते हैं वो सबसे अधिक जन्म लेंगे 84 जन्म, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, अंत में भी आत्माएं आती है तो एक जन्म लेती है। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है, अभी तक भी आ रही है, मरते कम है, उनसे ज्यादा जन्मते हैं, तो जरूर नई आत्माएं परम धाम से आती रहती होगी। तो बाबा कहते आत्माएं ऊपर से आती रहती है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है क्या आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया वाले थोड़ी समझते कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें पढ़ाते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो कैसे इस दादा में बाप आते हैं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है, आत्मा शरीर में न हो तो बुलाए भी कैसे, तो आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है, मुख्य तो आत्मा है ना, ये है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो क्या क्या होता रहता है, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक, अभी अभी भोजन कर रहा था, अभी हंस रहा था, बैल रहा था, और देखो अचानक ओम शांति। तो यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, वहाँ ऐसे कोई बीमारी नहीं होते है। नाम ही है स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है स्वर्ग, ये शब्द कहते ही मुख में पानी आता है ना, बाबा कहते कितना अच्छा नाम है, कहने से ही दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, कई तो मानने को भी तैयार नहीं है कि भारत कोई ऐसा स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, मानते ही नहीं, क्या समझते भारत हमेशा ही गरीब रहा है। तो बाबा कहते यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं, इसलिए सुख से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि दुख भी बहुत देख रहे हैं ना। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी इनके हैं, आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था, त्रेता में भी जब राम हुआ तो भी इस्लामी बोधी नहीं थे, श्री कृष्ण था, श्री लक्ष्मी नारायण थे तो तब भी इस्लामी बोधी नहीं थे, पर श्री राम और श्री सीता थे तो भी इस्लामी बोधी नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कह देते हैं दुनिया की आयु तो लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, और मूंझ कर क्या कहते हैं, कलयुग तो अर्जुन छोटा बच्चा है, मूंझ गए है ना कि अभी तो अंत है, ये मूंझ गए है, इस पे उनको नहीं पता, तो समझते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो, क्यों आए हो तुम बाबा के पास, और बाबा क्यों आए हैं, क्योंकि तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, और बाप क्यों आए है? स्वर्ग का वर्षा देने। तुम सभी स्वर्गवासी थे तो बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो और बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाते हैं, वो है स्वीट होम, आत्माएं वहां निवास करती है। फिर यहां आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके। शरीर जरूर चाहिए पाठ बजाने लिए, बिगड़ शरीर के आत्मा पाठ कैसे बजाएगी, बोलेगी कैसे? शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके। वहां परमधाम में शरीर न होने के कारण आत्माएं शांति में रहती है, और जब शरीर मिलता है तो कितना बोल बोल बोल, सारा दिन बोल बोल करते ना कहीं, तो पूरा शांति में रहना तो आता ही नहीं है उनको। सारा दिन अगर कोई नहीं भी होगा ना तो भी अपने से भी बातें करते रहेंगे, कई बार जोर जोर से अपने से बातें कर, भी कोई है भी नहीं, किससे बात कर रहे हो? बस बोलने की जो आदत होती है ना तो वो छूटती नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती है। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वो कहां गए? कहां गए सब देवताएं? किसको भी पता नहीं है। ये नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं है सिवाय बाप के, और किसी के पास ये नॉलेज है ही नहीं है, बाप ही सुनाते हैं। और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं, बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी नॉलेज से मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि नहीं पीते। उस समय इतना हो सकता है सिगरेट नहीं, बीड़ी लोग ज्यादा पीते थे गाँव में, तो अभी भी बीड़ी पीते ना जो बुजुर्ग लोग होते वो बीड़ी पीते। बीड़ी भी तो बिकती होगी ना या नहीं बिकती है पता नहीं, तो बीड़ी भी पहले तो बहुत पीते थे। तो इसलिए बाबा कहते बीड़ी नहीं पीते देवताएं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो। बात मत पूछो में सब कुछ आ जाता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं ये भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। किसने स्थापन किया सचखंड? सच्चे बाप ने स्थापन किया। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। वहाँ चढ़ता है नशा कि जो सचखंड भगवान बना रहे हैं हम उस सचखंड में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ही इस भारत को सचखंड बनाते हैं। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो वो भी तुमको सिखलाता हूँ। अभी तो झूठे हो गए ना सब, झूठे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो अभी फिर से सच्चे कैसे बनो, कैसे बन सकते हो सच्चे देवताएं, वो भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं? अब फिर बाबा को याद आया बच्चे तो बहुत आते हैं मधुबन में, और उस समय मकान तो इतने थे नहीं मधुबन में, बाहर तो कोई भी मकान नहीं था। अभी तो सुखदाम, ज्ञान विज्ञान भवन, योग भवन, हाँ राजयोग, ये ज्ञान विज्ञान भवन, कुंज भवन, अभी कितने भवन हो गए, स्वदर्शन भवन। तो इसलिए बाबा कहते अभी तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, केवल एक पांडव भवन ही था। तो बाबा कहते हैं कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। तो उस समय बाबा ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेक्शन बनवा रहे थे, तो इसलिए बाबा कहते बनवा रहे हैं मकान, अंत तक भी बनते रहेंगे। वरदान मिल गया बाबा का, अंत तक भी बनते रहेंगे। अभी तक बन रहे हैं ना, जहाँ देखो बाबा का कान का मकान बनता रहता है। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। अब कई बार बना बनाया ही मकान मिल जाता है तो खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं, अभी भी यही करते हैं ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही कार्य करते हैं। कैसे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बाबा बनवा रहे हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, ये फिर गोरा बनता है। हाँ, गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना, म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा के समय तो बस दो तीन म्यूजियम थे, एक जयपुर का म्यूजियम था और एक ये जो अभी श्री फोर्ट है, साउथ एक्सटेंशन म्यूजियम कहते थे उनको, वहां तो बाबा ने कहा ट्रांसलाइट के चित्र बनवाओ। म्यूजियम जो जयपुर में है वो तो सिंपल चित्र है, लेकिन फिर बाबा ने कहा भी ट्रांसलाइट के बनवाओ। तो जो दिल्ली का म्यूजियम है, अभी तो दूसरा रूप है, लेकिन उस समय बाबा ने साउथ एक्सटेंशन में ट्रांसलाइट के चित्र बनवाए थे, हर चित्र ट्रांसलाइट का था। तो बाबा कहते हैं म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, कहाँ, पांडव भवन में। वैसे बाबा के बच्चे आते हैं, लेकिन बाबा यहाँ म्यूजियम नहीं बनवा रहे। सेंट्रो पर तो बहुत म्यूजियम्स है, हाँ बड़े बड़े चित्र हैं, लेकिन पांडव भवन में बाबा नहीं बनवाते। हाँ, ओम शांति भवन में बड़े बड़े चित्र लगे हुए हैं, परंतु पांडव भवन के अंदर क्यों नहीं। तो बाबा कहते हैं पांडव भवन में, हाँ यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं। क्यों? इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। पांडव भवन क्या है? अंदर आते ही साइलेंस का अनुभव होता है, तो ये टावर ऑफ साइलेंस है। आंगन में भी इतनी साइलेंस हो तो बिल्कुल लगे अरे हम तो टावर ऑफ साइलेंस में पहुंच गए। तो देखते पार्टियां आती है, कितना आवाज आता है। अगर सचमुच आवाज ये बंद हो जाए, मधुबन के अंदर बिल्कुल टावर ऑफ साइलेंस का अनुभव करे। दुनिया में तो कितना आवाज है, और यहाँ आकर के टावर ऑफ साइलेंस। बाबा के अंतिम दिनों में बाबा यही कहते थे, बच्चे तुम्हें टावर ऑफ साइलेंस बनना है, टावर ऑफ पीस बनना है, सारी दुनिया को यहाँ से शांति की सकाश देनी है। बाबा ये सब, तभी तो शांति स्तंभ बनाया गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, पहला निश्चय क्या होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा कोई साधु संत नहीं है जो ये पढ़ाते हैं। ये दादा, अब ये दादा कौन था, ये दादा तो सिंध में रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वो है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं है, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु फिर कह देते हैं नाम रूप है ही नहीं। गॉड फादर भी कहते हैं, पिता है, पिता माना कोई नाम रूप तो होगा ना, तो फिर कह देते हैं नाम रूप है ही नहीं, वो निराकार है। और निराकार का अर्थ क्या लेते हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो बाबा क्या बताते हैं कि आकार जरूर है, पर वो साकार आकार नहीं है, प्राकृतिक आकार नहीं है। बिंदु प्राकृतिक आकार, हाँ उसको हम माप तोल नहीं कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब नहीं बता सकते हैं, बिंदु का है ही नहीं, इसलिए उसको निराकार ही कहेंगे। फिर भी उनका अस्तित्व है। ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, ग्राफ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं कि बिंदु, बिंदु की परिभाषा क्या है, पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो डायमेंशंस। उनमें कोई डायमेंशन नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है। ग्राफ बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जहां पॉइंट से शुरू किया उसको कोई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो कह देते हैं वो निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। पर बाबा कहते आकार है परंतु ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो इसीलिए साकार नहीं है, पर आकार क्यों नहीं है। फिर कह देते वो सर्वव्यापी है, अरे परमात्मा कहाँ है पूछो तो क्या कहेंगे, वो तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हाँ बाबा को आश्चर्य लगता है कैसे कहते हैं ये सबके अंदर है, अरे हरे के अंदर तो आत्मा बैठी है ना, सब भाई भाई है ना, ये तो नहीं कहेंगे सब बाप बाप है, फादरहुड थोड़ी, ये तो ब्रदरहुड है। हरे के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना, फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया, घट घट में कौन बैठा, आत्मा बैठी है। ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है आत्मा भी है, अब आत्मा निकल गई कहेंगे या परमात्मा भी निकल गया, तो आत्मा भी है परमात्मा भी है दोनों बैठे, ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं कि बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ, मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा ये सेवा करने लिए। भगवान को किस लिए बुलाते हो, ये धंधा करने लिए, कौन सा धंधा माना, कोई सेवा, पावन पतित से पावन बनाओ ये सेवा करने लिए बाबा को बुलाते हैं। ये सेवा करने लिए हम सभी को बाबा कहते हैं हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ, पतित से पावन बनाओ और सभी को शुद्ध बनाओ, ये सेवा आकर के करो, इसलिए बाबा को पुकारते हैं। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, बाबा कई बार आश्चर्य से कहते थे पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है, भले कितना भी बुलाओ पर बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है। पावन दुनिया में हम बुलाएंगे भी नहीं, अभी हम कहेंगे चलो बाबा पावन दुनिया में आना, तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे वहां जाकर बुलाना, और वहां तो बुलाएंगे ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है, पति दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। कई कहते हैं अगर बाबा देखते ही नहीं है पावन दुनिया, तो पावन दुनिया की बातें कैसे बताते, तो बातें किस आधार पर बताते हैं, नहीं कि देखा है तभी बताते, वो तो जानते ही है पहले से, क्योंकि बीज है ना, बीज तो अपने सारे झाड़ को जानता है, तो क्यों नहीं बता सकते हैं भले देखा नहीं है। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया तो देखते ही नहीं है, पतित दुनिया में तुम्हारी सेवा करने लिए आते हैं, अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वो जाकर के क्या बनेंगे, राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनते हो। राजाओं का राजा क्यों कहते हैं, बहुत इसकी परिभाषा हो सकती है, सबसे पहले तो जो द्वापर कलयुग के राजाएं हैं उनके भी राजाएं, क्योंकि द्वापर कलयुग के राजाएं सतयुग के राजा रानी को ही तो पूछते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम ये द्वापर कलयुग के राजाएं भी पूछते आए, तो उनके भी वो राजाएं विश्व के मालिक है, इसलिए राजाओं का भी राजा है। तो बाबा कहते हैं तुम जो राजयोग सीखते हो वो जाकर राजाओं का राजा बनते हो, तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे, सत्युग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है, पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम अथवा आदि देव कहते हैं, ये कोई को पता नहीं है कि एडम आदम आदि देव ये सब एक ही के नाम हैं, बहुत है हाँ ब्रह्मा भी उनका ही नाम है, बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं, पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है, क्या कितनी जबरदस्त होगी, सबको पाप आत्मा बना देती है माया। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं, पवित्र आत्माएं तो देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी ये है रावण राज्य पतित दुनिया, इसको कहा जाता है, और क्या 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 नाम देंगे, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। अब कांटों के जंगल में जो जाएगा उसको तो कांटे ही चुभेंगे ना। तो अब तो बाबा कहते हैं रावण राज्य पति दुनिया कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन का जो बगीचा उसको मुगल गार्डन कहते थे, अभी उसका नाम चेंज किया है, पता नहीं क्या नाम रखा, कुछ नया अच्छा नाम रखा है। हाँ, मुगल शब्द को हटा दिया। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। हाँ, अभी नाम रखा है अमृत उद्यान, याद आया अमृत उद्यान, तो कितना सुंदर नाम है अमृत का उद्यान, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। सब प्रकार के फूल है, अक के फूल भी मिलते हैं, तो शिव के ऊपर क्यों चढ़ाते अक के फूल, अक के फूल जंगली होते हैं ना, जंगलों में ही मिलते हैं, कोई उसको उगाता नहीं है, ये जंगल में बहुत मिलते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स है। तो बाबा कहते तो शिव के ऊपर यही फूल चढ़ाते, क्योंकि बाबा सबका पिता है, ऐसी ऐसी आत्माएं भी तो है, तो शिव बाबा की संतान। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं ये भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिया भी है, कोई रतन ज्योत भी है, कोई फिर अक भी है, ऐसे भी है मेरे बच्चे, नंबर वार तो है ना। हाँ, मोतिया रतन ज्योत ये सब खुशबूदार फूल है, और अक तो जंगली फूल है, कोई फिर अक के भी है, नंबर वार तो है ना। तो इसको कहा जाता है दुख धाम मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े, बहुत अध्ययन किया बाबा ने शास्त्रों का, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। हाँ, बाबा सुनाएंगे फिर कहेंगे देखो गीता में भी ये है, तो रेफर करते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, कितना निष्काम सेवा करते है। बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा मैं इतना निष्कामी हूँ क्योंकि न मैं खाता हूँ न पीता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे शरीर ही नहीं है, तो मैं अपने लिए क्या लूंगा। भाई जिनको शरीर है उनको, उनके लिए वो समझते हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आत्मा बिंदु को तो कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तो मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई। हाँ, कोई सुख में सिमरन करता ही नहीं है। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है, स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वो सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से। हाँ, बाबा भविष्य में क्या होगा वो भी याद दिलाते हैं ना। तो दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएगा। अभी देखो तमिलनाडु में केरला में बड़ा तूफान आया, पता एक नाम दिया उसको, बहुत कुछ तूफान है वहां, तो सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर के बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था सब कहाँ गया, अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं, कंगाल बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वो अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पति पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, वो है हठ योग और ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए है, दोनों माना युगल, दोनों स्त्री पुरुष दोनों के लिए राजयोग है। वो हठ योग तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं, सन्यासी भी बन जाते तो पुरुष ही बनते। आजकल तो चलो स्त्रियां भी थोड़ा बन रही है, लेकिन पहले तो पुरुष ही होते थे, हठ योग भी वही करते थे। वो हठ योग से पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। अभी जो तीसरा विश्व युद्ध होगा तो बाबा कहते हैं ये अंतिम लड़ाई है ना। ये जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसकी समाप्ति कैसे हुई, जब एटम बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी जापान पर, तो उस समय आइंस्टाइन थे जो उसका पिता है, माना जिसने एटम बॉम्ब को इन्वेंट किया। तो उसे जब पूछा गया कि अभी जो इतना नुकसान हुआ, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, उसे पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर सब पत्थर और मिट्टी से खेलेंगे, माना फिर से पत्थर युग आ जाएगा, खत्म। अभी जो इतना चकाचौंध ये सब खत्म हो जाएगा, तो पत्थर और मिट्टी होते ऐसे ही समझते ना, पहले तो कुछ भी नहीं था, पत्थर और मिट्टी था, फिर वो ही आ जाएगा। पर बाबा क्या कहते हैं, विनाश होगा तो स्वर्ग आएगा। तो बाबा कहते हैं, माना वो भी जानता था कि अगर ऐसे विश्व युद्ध फिर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो ये दुनिया इस प्रकार की नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई शुरू ही तब होगी, हाँ ये लड़ाई शुरू होगी तो फिर रुक नहीं सकती है। अगर किसी ने बटन दबाया और अटैक किया, एटम बॉम्ब किसी देश पर फेंका, तो वो भी छोड़ेंगे थोड़ी, आजकल तो कंपटीशन है, तो बस फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर सब एक दो पर फेंकेंगे, फिर क्या होगा। बाबा कहते हैं ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती है, ये लड़ाई शुरू ही तब होगी। अब क्यों रुकी हुई है, बार बार धमकियां तो देते रहते हैं, हम ये एटम बॉम्ब डालेंगे, ये करेंगे। बाबा कहते बाबा क्यों नहीं हो रहा है, तो कारण बाबा बताते हैं, ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो किस लिए रुकी हुई है, हमारे कारण, हम कर्मातीत अवस्था को नहीं पाए हैं। तो शुरू तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, और दूसरा तुम स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे, तभी होगी ना, अभी तो लायक पूरे है नहीं ना। तो इसलिए बाबा कह रहे तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे, तब बाबा कहते हैं ये लड़ाई शुरू होगी, तीसरा विश्व युद्ध। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। वरदान अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, अनुभव कर रहे हैं ना, बाबा की दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक किसको कहते हैं? गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी जब का मतलब है अष्ट शक्तियां उसके अंदर है, सारे आठ शक्तियां जो बाबा बताते हैं वो सब गणेश के अंदर है उनके आकार के आधार से। तो बाबा कहते हैं अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं, कौन बन सकते हैं विघ्न विनाशक, जिसमें सर्व शक्तियां हैं, एक एक अंग एक एक शक्ति की निशानी है, बताते हैं ना विस्तार से। तो विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। विघ्न क्यों आते हैं? क्योंकि शक्तियों की कमी है। कितने भी रूप से माया आए लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। नॉलेजफुल बनो माना आदि मध्य अंत सोचो, अगर ये करूंगा इसका नतीजा क्या होगा। तो नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। दुआओं का हाथ भी शिव बाबा का हमारे सिर पर है और उनका साथ भी है, याद का साथ, तो विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। अव्यक्त इशारा, आज 3 तारीख है। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा न करना अच्छा है। खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते और सेवा करते, ऐसी सेवा का बाबा कहते को औचित्य ही नहीं। तो बाबा कहते ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाओ, फिर सेवा में आओ। कोई भी सेवा करने से पहले संतुष्ट मणि बन के सेवा करो तो अच्छा है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। अब अंदर में संतुष्ट है नहीं और सेवा कर रहे हैं तो बोझ चढ़ेगा ना, क्योंकि सबको ही परेशान करेंगे। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वो बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे क्या है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट तो आप सबने सुनी होगी कि पांडव भवन के ट्रायल वाले भाई बहने आज सुबह 10 बजे शांतिवन ज्ञान मोती मेडिटेशन हॉल में पहुंचे, जहां पर भ्राता निर्वैर भाई जी और डॉक्टर भाई जी और डॉक्टर निर्मला दीदी जी के निमित्त सौगात दिया जाएगा। जिन्होंने नहीं ली है तो निर्मला दीदी और निर्वैर भाई, निर्मला दीदी का तो कब का हो गया पता नहीं, सभी भाई बहने अपने साथ ट्रायल कार्ड अवश्य लेकर आए। तो ये ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए अभी हम सब